ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे इस संसार की विशेष आत्माएं, पूर्वज आत्माएं, पूज्य आत्माएं, आधार मुहूर्त, उद्धार मुहूर्त, संसार के सहारे दाता, मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर स्नेह के सागर, अनेका अनेक सम्मान बाबा हमको देते हैं। जिस सम्मान की सीट पर सेट होकर हमारी जो सोई हुई शक्तियां हैं वो जागृत होती हैं, उसका अनुभव करते हैं, स्वयं में परिवर्तन होता है, उसकी महसूसता होती है। तो प्रश्न ये है कि हम बाबा के बने क्यों, भगवान के किस लिए बने, हम किस लिए बने। वर्षा पाने के लिए, मना लालच बना हुआ है अभी भी, है ना, क्योंकि मनुष्य की मानसिकता होती है कुछ प्राप्ति की। तो पहली बात निकली वर्षा पाने के लिए, और किस लिए बने। आज वर्षा पाने के लिए देखो, संसार में भी तो ऐसा नहीं कि बाबा के बच्चे सभी एक जैसे हैं, कोई को तो बहुत साहूकार भी है, लेकिन फिर भी वो बाबा के बने क्यों, कौन सी चीज की कमी थी। प्यार की कमी थी। बाबा ने आज कहा ना, विश्व में अरबपति खरबपति हैं लेकिन स्नेह नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपति हैं संसार में, बहुत बड़े बड़े घराने हैं, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन प्यार की कमी बहुत है। और उस प्यार की कमी के कारण क्या होता है, घरों में रिश्तों में दरार पड़ जाती है। जो आपस में अपनापन होना चाहिए, मिठास होनी चाहिए, एक दो को समय पर सहयोग देना चाहिए, आपस में बैठ के दिल की हाल चाल एक दूसरे से सुनना सुनाना चाहिए, वो नहीं होता है, क्योंकि सब स्नेह का अकाल पड़ गया। जैसे स्नेह के जैसे सभी प्यासे हो गए हैं, अतृप्त हैं, ढूंढ रहे हैं। तो बाबा ने हम सबको क्या बना दिया, मास्टर स्नेह का सागर बना दिया। और स्नेह की निशानी बाबा ने बताया क्या है, स्नेह की निशानी अगर है हमारी भगवान से तो समान बनना है। जिससे प्यार होता है उसके समान बनना सहज होता है। अगर प्यार में कमी है तो समान बनने में भी थोड़ा एडजस्टमेंट नहीं हो पाती है। तो बाबा से प्यार कैसे बढ़ेगा, अगर हमारे सारे ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ का आधार भी अगर देखें तो वो स्नेह ही है। बाबा से हमारा जितना प्यार है, स्नेह है, तो हमारे में पुरुषार्थ करने की जरूरत पड़ती नहीं है, पुरुषार्थ अपने आप होता है। जिससे स्नेह होता है, प्यार होता है, उसको याद करना पड़ता है, उसकी याद भूलना मुश्किल हो जाती है। तो हमारा अगर भगवान से स्नेह है तो फिर योग तो टूटना नहीं चाहिए, योग तो निरंतर लगा ही रहना चाहिए। और योग तो वास्तव में निरंतर लगा ही रहता है, लेकिन कहीं और ही लगा रहता है। हैं तो सभी अखंड योगी हैं, लेकिन वो योग कहीं देहधारी में लगा हुआ है, कहीं साधनों में लगा हुआ है, अनेक प्रकार की जाल हैं जहां हमारा मन बुद्धि फंस गया है। तो बाबा ऐसे समय पर हमको आकर स्वतंत्र बनाते, स्वतंत्र पंछी, उड़ता पंछी। जितना मन हमारा व्यर्थ से मुक्त होता है, जो ऐसे इधर उधर की बातों से हम मुक्त रहते हैं, तो स्वतः मन उड़ता है। अनेका अनेक जन्मों से हमने अपने मन को बांधने की आदत डाल दी है, उसके अंदर ही रहना ठीक लगता है, उससे बाहर नहीं निकलते। और उससे बाहर निकलने का तरीका एक ही है, वो है बाबा का ज्ञान। और ज्ञान भी समझ तो बाबा ने कहते बाद में आता है, आज के मूल्य में था ना, ज्ञान तो बाद में समझ में आता है, लेकिन पहले स्नेह खींचता है वो, लेकिन स्नेह का आधार भी ज्ञान ही है। अगर हमें किसी से प्यार होता है तो पहले उसके बारे में जानकारी होती है। आंखें बंद करके थोड़ा किसी से हम हाथ मिला देते हैं, अगर हम सामने वाले को जानते भी नहीं हैं, थोड़ा सा स्माइल करता है तो हम हाथ मिला लेते हैं। गुस्से में सामने वाला को तो हम हाथ मिलाएंगे, तो जानकारी हुई ना कि गुस्से वाला है स्नेह वाला है। तो जानकारी माना ज्ञान, ज्ञान माना समझ, अंडरस्टैंडिंग। तो बाबा का ज्ञान जो है वो स्नेह से भरा हुआ है, प्यार से भरा हुआ है, इस ज्ञान में रस है। ये रूखा सूखा ज्ञान नहीं है, जैसे भक्ति में भी बहुत रस है लेकिन ज्ञान में भी बहुत ज़्यादा रस है। अगर भक्ति में हम कंपैरिजन करें तो ज्ञान में तो बहुत ही ज़्यादा रस है इसमें, लेकिन इस ज्ञान को उस तरीके से हम अपने जीवन में यूज़ करेंगे। तो अगर हम खाली सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, तो ज्ञान का रस नहीं बनता है, वो ज्ञान फिर हजम नहीं होता है, बदहजमी हो जाती है, ऊपर ऊपर से निकल जाता है। मुरली सुनते सुनते तो अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में पूछेंगे क्या है तो बोलेंगे बहुत अच्छी थी, बात मत पूछो। लेकिन क्या था, बात मत पूछो, बहुत ही अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि बात ही मत पूछो। तो स्नेह का आधार भी ज्ञान है। तो ज्ञान से प्यार करना अपने को, ज्ञान से प्यार माना ज्ञान दाता से प्यार, और ज्ञान दाता से प्यार माना दाता के परिवार से प्यार, दाता के यज्ञ से परिवार, यज्ञ से प्यार। तो इस जीवन में हमें अपने आप को इतना स्नेह से संपन्न कर लेना है, जैसे हम देखते थे दादियों के जीवन में, बड़े भाई बहनों के जीवन में, जो भी यज्ञ की वरिष्ठ आधारमूर्त आत्माएं हैं, स्नेह से भरी हुई हैं। सामने जाने से ही कैसे फीलिंग आती है, बोलते भी कुछ भी नहीं है, लेकिन सामने जाने से, उनके सामने जाएंगे तो हमारा मुख कैसे हो जाता है, ऐसे हर्षित मुख हो जाता कि नहीं हो जाता है। सामने वाले ने भले कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि वो स्नेह की संपन्न मूर्तें हैं। तो वो कैसे बने, वो उनके जीवन का आधार क्या रहा, ज्ञान। ज्ञान को कूट कूट के अपने जीवन में भर लिया है, वो सारा ज्ञान कर्मेंद्रियों में समा गया है, सारे कर्मेंद्रियां जैसे ज्ञान का स्वरूप हो गई हैं, वो योगी जीवन हो गया है। योग लगाने वाले योगी नहीं है, योग जैसे स्वतः लगा हुआ है। तो हमें स्नेह की ऐसी मूर्त बनना है कि हमें ज्ञान सुनाने की आवश्यकता ना पड़े। बाबा ने क्या कहा, अंत में क्या होगा, ज्ञान सुना सकेंगे नहीं, केवल साक्षात्कार होगा। जिसने जैसा जो पुरुषार्थ किया है, जिसने जो जितनी आप परमात्म प्यार अपने अंदर भरा हुआ है, परमात्म शक्तियां अपने में भरी हैं, परमात्म खजानों को अपनी पूंजी बनाया है, अपना खजाना बनाया है, जो हम अंदर में हैं वो प्रैक्टिकल बाहर में दिखाई देगा। तो उसमें बोलने की जरूरत नहीं है, और उसी का यादगार फिर भक्ति मार्ग में जड़ मूर्तियां होती हैं। जैसे जड़ मूर्तियां बोलती नहीं हैं, ऐसे हमारी अंतिम अवस्था भी कैसी होगी, जड़ मूर्ति जैसी हो जाएगी, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसको जो चाहिए वो सामने आएगा, वो उनकी मनोकामनाएं अपने आप पूर्ण होती जाएंगी, लेकिन उसके लिए मेहनत खुद से स्वयं को करनी पड़ेगी, खुद पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और ये पुरुषार्थ कैसा है, मीठा पुरुषार्थ है, ये कोई भारी पुरुषार्थ नहीं है। जो ऐसे ऐसे शब्द ना, उनके उन शब्दों के साथ ऐसे शब्द जोड़ देने हैं जो उन शब्दों को हल्का कर दे। जैसे पुरुषार्थ शब्द है, सुनते क्या लगता है, बहुत भारी हो जाता है, पुरुषार्थ करना, और बोल दे 8 घंटे याद करना, और मन भारी हो जाएगा, 1 घंटा हो नहीं रहा, और कोई 8 घंटे बोल दे क्लास में तो गए काम से। तो ऐसे शब्दों को सरल बनाना है, उन शब्दों के ऐसे साथ में ऐसे संज्ञा विशेषण जोड़ देना है जैसे वो हमें भारी ना लगे। तो कौन सा पुरुषार्थ करना है आज से, मीठा पुरुषार्थ। तो मीठा पुरुषार्थ कैसा होता है, जैसे हम गीत गाते हैं, गीत गाने में मेहनत लगती है, तो ऐसे पुरुषार्थ भी एक गीत संगीत की तरह हो जाए, नेचुरल हमारा पांव थिरकता रहे। जिसको डांस नहीं करने आता है, अगर गीत चालू कर दिया जाए तो डांस शुरू हो जाता है, पांव थिरकना चालू हो जाते हैं। ऐसे ज्ञान मुरली सुनना आरंभ कर दें तो मन हमारा डांस करने लग पड़े, मन जैसे एकदम जागृत हो जाए, उसकी नींद उड़ जाए, है ना। अगर हम उसको पुरुषार्थ शब्द को भारी करते हैं तो फिर नींद उड़ती नहीं है, नींद आती है। वो भी एक इंद्रिय सुख का अनुभव होता है, नींद में भी होता है अनुभव, है ना। और जैसे मीठे मीठे स्किल दे, बच्चे बोलेंगे बड़ी शांति मिलेगी, अब मुरली पूरी हो गई, खुशी होती कि नहीं होती। देखो सब कितने स्पष्ट बात दिए, सच बोल रहे एकदम। तो मुरली तो हमारे जीवन का श्वास है, तो इस पुरुषार्थ को ना बड़े प्यार से स्वीकार करना है, भारी नहीं करना है। क्योंकि हम अनेक प्रकार की क्लासेस सुनते रहते हैं, तो सुनना सभी की है। ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि, क्योंकि आजकल सुनने में आता है कि बहुत सारी क्लासेस हो गई हैं, यूट्यूब में बाढ़ आई पड़ी है। अच्छी बात है, आनी चाहिए वो तो। अगर हम वो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, फालतू बातें करी इधर उधर की। कुछ कुछ तो कर रहे हैं ना, कोई सभी कर रहे हैं ना, वो तो और बाढ़ आनी चाहिए। तो क्लासें हमको सबकी सुननी है, लेकिन उससे हमको क्या ऐसा सहज पुरुषार्थ लगे वो हमको पकड़ लेना है, उसकी कला सीखनी है, ताकि हमारा जीवन नेचुरल नेचर बन जाए, पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ना पड़े, पुरुषार्थ सहज हो जाए, बाबा को याद करना ना पड़े, बल्कि याद भूलना मुश्किल हो जाए। तो आज की मुरली पर डिस्कशन करेंगे। सभी ने मुरली सुनी है आज की, हैं सुनी है? अच्छा, तो स्लोगन क्या था आज का? बहुत अच्छा था, बात बहुत पूछो। इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि याद ही भूल गया वो। तो क्या स्लोगन था? स्लोगन तो बहुत ही अच्छा था सच मुझे, क्या था है? कर्मेंद्रियां नहीं, वो किसी दूसरी जगह था। डैश की डैश पर स्थित रहो तो डैश मानेंगी, क्या मानेंगे बेटा? हाँ, अभी तक तो देख भी लेना चाहिए, कॉपी पेंसिल सबके पास पड़ा होता लिखेगा। बाबा ने कह रहा कॉपी करने में कोई इसमें हर्जा नहीं, कॉपी करो खूब, है ना। तो कहीं उन्होंने कर भी लिया होगा। तो सोमान की सीट पर सेट रहो तो सर्वशक्तियां आपका ऑर्डर मानेंगी। तो कितनी बड़ी बात है, सोमान की सीट अर्थात स्मृति, और उस स्मृति में समर्थ थी। पिछले संडे की मुरली थी। स्मृति तो बच्चों को होती है, बाप उसकी बधाई देते हैं, लेकिन उस स्मृति में क्या चाहिए? समर्थ ही चाहिए, ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए। तो जो भी बाबा हमको सोमान देते हैं उसका चिंतन करेंगे तो वो सोमान शक्तिशाली बन जाता है। केवल एक सोमान को ले लिया कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, उसके आगे चिंतन करना है तो वो शक्तिशाली बनेगा, तो वो सोमान में ताकत आएगी, महसूस होगा, और उसका असर हमें भी महसूस होगा। महसूस होगा कि समय पर सर्वशक्तियाँ काम करेंगी, अर्थात ये जो हमारी कर्मेंद्रियाँ हैं ये हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी। और सारा पुरुषार्थ क्या है? इन कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने का ही है। नहीं तो आँखें हैं कि बात मत पूछो कहाँ कहाँ चली जाती हैं, मुख है नहीं बोलना तो अपने आप ही बोल निकल जाते हैं, फिर बाद में हम बोलेंगे सोचा तो नहीं था ऐसा कि मुझे बोलना चाहिए था लेकिन निकल गया बोल, तो कंट्रोलिंग पावर नहीं रही पास में। तो चिंतन को बढ़ाना है, वो चिंतन हमारा कर्मेंद्रियों जब समा जाएगा तो हमारी कर्मेंद्रियां हमारी मित्र बन जाएंगी। और आज का दिन कौन सा है? फ्रेंडशिप डे है ना। तो एक कर्मेंद्रियों को भी अपना दोस्त बनाना है, क्योंकि 24 घंटे हम कहाँ रहते हैं? इन कर्मेंद्रियों के आसपास ही तो रहते हैं। अगर आसपास पड़ोसियों से दोस्ती नहीं की तो क्या होगा? पड़ोसी दुख देंगे फिर, है ना। आज उसका पेड़ पौधा उखाड़ेंगे, आज गमला उठा लिया, आज सिलेंडर निकाल दिया, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो ये कर्मेंद्रियां भी हमारी मित्र हैं, दोस्त हैं, तो इनको भी प्यार से चलाना है। और ये तब चलेंगी जब हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, ज्ञान चर्चा करेंगे, ड्रिल अभ्यास करेंगे, बाबा की दी हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में लाने का सहज मीठा पुरुषार्थ करेंगे तो नेचुरल नेचर हो जाएगी। तो फिर कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देंगी, फिर कर्मेंद्रियों के प्रति अच्छा चिंतन चलेगा, कौन सा चिंतन चलेगा? अहो ये सौभाग्यशाली आंखें कि ये इन आंखों ने इतनी बार भगवान को निहारा है, नज़रें भगवान के ऊपर पड़ी हैं और भगवान की नज़रें इन आंखों में पड़ी हैं, तो ये नज़रें कैसी होगी? जैसे दृष्टि वृत्ति पवित्र होगी, इस दृष्टि में स्वयं भगवान की दृष्टि समाई हुई है, ये दृष्टि जैसे भाई भाई की दृष्टि हो गई है, कल्याणकारी दृष्टि हो गई है, सुखमय दृष्टि हो गई है, एक दो को आगे बढ़ाने का दृष्टि हो गई है, सबके गुण ग्राहक गुण देखने की दृष्टि हो गई है, तो धीरे धीरे कर्मेंद्रियों के प्रति चिंतन चलेगा और कर्मेंद्रियों को भी सुख मिलेगा, शक्तिशाली और सोमान शक्ति के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। तो सोमान आज की मुरली क्या हो गया? स्लोगन। तो आज बाबा ने किससे मिलन मनाया, बच्चों ने किससे मिलन मनाया और बाबा ने किससे मनाया? आए कौन किसको देख रहा था? बेहद के मात पिता किसको मिल रहे थे? सारे बेहद के परिवार को। बाबा ने कहा ये सभा नहीं है, ये क्या है? परिवार है। और ये कैसा परिवार है? ये अलौकिक परिवार है, ब्राह्मण परिवार है, न्यारा न्यारा और अति प्यारा परिवार है, और विचित्र परिवार है, चित्र होते हुए जैसे विचित्र है, अनोखा परिवार है। तो ये परिवार सारे कल्प में अभी मिलेगा, है ना? और कितना प्यारा परिवार है ये, जब शुरू शुरू में कोर्स होते हैं तो बहुत प्यारा लगता है, और धीरे धीरे और ही प्यारा लगता है, फिर जब थोड़ा नज़दीक आते हैं तो बात मत पूछो। तो सब प्यारे लगने चाहिए, और वो तब लगेगा जब हमको निरंतर स्मृति रहेगी कि सचमुच ये भगवान की चुनी हुई आत्माएं हैं, साधारण नहीं है। दूसरे के प्रति हमारा नेगेटिव एटीट्यूड तब बनता है जब हम दूसरे के अवगुणों को देखते हैं, और दूसरों के अवगुणों को भी तब देखते हैं जब हमने अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ नहीं किया है। हम अपने अवगुणों के बारे में सोचते रहते हैं, नहीं, बाबा ने कहा जो तुम बच्चों को बाप ने गुण दिए हैं उनका भी चिंतन करो। तो सभी को अपनी अपनी एक लिस्ट बनानी है कि मेरे में कौन कौन से गुण हैं जो हमको भगवान से प्रसाद के रूप में प्राप्त हुए हैं। सभी को अपना ये होमवर्क करना है, कौन सा? पॉजिटिव होमवर्क। अपने अपने गुण विशेषताएं लिखनी है कि मेरे में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, नहीं तो हम अपनी कमजोरियों का रोना रोते रहते हैं, उन कमजोरियों का चिंतन करते दुखी होते रहते हैं, हाय इतने सालों से मेरी कमजोरी गई नहीं, इतने सालों से मेरी कर्मेंद्रियों पर मेरा नियंत्रण ही नहीं है, इतने सालों से मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ या गुस्सा मेरा गया ही नहीं है, इन्हीं उल्टा चिंतन चलाते रहते हैं। ये सोचना छोड़ देना है, पॉजिटिव सोचना है कि हमारे में बाबा के बनने के बाद कौन कौन सी विशेषताएं भरी हैं, तो कम से कम 100-100 तो निकालनी पड़ेगी, वैसे तो 100 से भी ज़्यादा होंगी, लेकिन कम से कम कितना एम एन ऑब्जेक्ट रखना? 100 का। तो कौन कौन सी विशेषता? सबसे पहले विशेषता कौन सी है हमारे में? बाबा को पहचान लिया, कितनी बड़ी बात है। बाबा ने पहचाना हमको या हमने बाबा को पहचाना या दोनों ने पहचाना? हम इधर से जा रहे थे, बाबा उधर से आ रहे थे, रास्ते में मेल हो गया। वो गीता ना एक, हम मुड़ के जाएं बतन में भोग की थाली लेके, हम इधर से जाएं बाबा उधर से आए, तो दोनों एक दूसरे को पहचान लिया रास्ते में। क्यों? क्योंकि फ्रेंडशिप डे आज, दोस्ती है आज, तो दोस्त ही दोस्त मिल गए ना आपस में, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई बहुत सालों के बाद दोस्त आपस में मिले तो कितनी खुशी होती है। और हमारा दोस्त कैसा है? कैसा है? जो पूरे संसार का मालिक है, वो भाग्य विधाता है, वो सारे संसार के दुख हरने वाला है, सारे संसार को मदद करने वाला है, सबको लिबरेट करने वाला है, तो वो हमारा दोस्त है। तो हमारा दोस्त इतना बड़ा है तो हमें कैसे होना चाहिए? तो दोस्त को भी ऐसा ना कि दोस्ती समानता में होती है। बाबा को भी ऐसी फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि मैंने ऐसे वैसे तो दोस्ती कर ली, उसको भी लगा हाँ हमने भी सब के अच्छे से दोस्ती की है, तो हम भी कोई साधारण आत्मा नहीं है, है ना? जैसे दादी जी, बड़े दादी जी बोलते थे, दादी प्रकाशमणि जी, कि बाबा आप भी सारे विश्व में ढूंढ के आओ, अगर आपको ऐसे बच्चे मिल जाए तो बताना हमको भी। कितना नशा था दादी को। तो हम कौन सी आत्माएं हैं जो जिनको सुधारने के लिए भगवान को आना पड़ा? संसार के लोग नहीं सुधार पाए, है ना? तो इतनी शक्ति है हमारे में, है ना, घर में बच्चों को भी जो बहुत शरारती बच्चे होते हैं तो माँ बाप भी थोड़ा ताकतवर होते हैं, है ना। तो बाबा भी हमको सुधारने के लिए आया हुआ है, इतने ताकतवर है, तो अपनी शक्ति को पहचानना है, तो अपनी विशेषताएं लिखनी है। तो बाबा ने कौन सा परिवार देखा, अलौकिक परिवार, अनोखा परिवार, विचित्र परिवार, ये ब्राह्मण परिवार, न्यारा परिवार, अति प्यारा परिवार, है ना। और फिर बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा अमृत वेले से क्या देखा कि बच्चे कैसे बाबा से रूरुहान कर रहे हैं, कैसे रूरुहान, मीठी मीठी रूरुहान, मिलन मना रहे हैं और वरदान ले रहे हैं। तो बाबा से सवेरे अमृत वेले वरदान लेने हैं। और ये कौन से डेट की मुरली है, 18 जनवरी स्नेह से भरा हुआ दिन है। तो अमृत वेले को रोज समय ऐसे ही समझना कि आज 18 जनवरी है, आज मेरा अव्यक्त होने का दिन है, श्री छोड़ने का नहीं, अव्यक्त होने का, अव्यक्त होकर चलने का दिन है, है ना। तो सवेरे सवेरे बाबा से वरदान लेने हैं और मुरली को वरदान में कन्वर्ट कर देना, मुरली को मुरली के तरीके से नहीं सुना, उसको वरदान के रूप में कन्वर्ट कर दो। जैसे बाबा ने हमारे सिर पर हाथ रखा हुआ है, बाप समान स्नेही आत्मा बाबा, इसलिए बाबा ने क्या कहा, अमृत वेले बच्चों से मीठी मीठी रूरुहान भी करते हैं, मिलन भी मनाते हैं, वरदान भी देते हैं, और स्नेह के रिटर्न में कौन सा वरदान देते हैं बाबा, आय की मुरली बताया ना, कौन सा वरदान दिया, बहुत अच्छा था, सदा स्नेही मूर्त बाबा। और उसमें तीन बातें बताई, सदा हर समय हर आत्मा के साथ हर परिस्थिति में सदा स्नेही मूर्त, है ना। बाबा कहते मेजॉरिटी बच्चे तो सवेरे सवेरे प्रेम के स्वरूप में बैठे होते हैं ब्रह्मा बाप के सामने, क्योंकि दिन 18 जनवरी का है। और फिर बाद में बाबा वरदान भी देते हैं, क्यों वरदान दिया, क्योंकि युद्ध के मैदान में उतरना सवेरे सवेरे, फिर बाद में मुरली क्लास के बाद में, तो वरदान दे दिया, कौन सा, सदा स्नेही मूर्त बाबा। और बता दिया हर समय हर आत्मा के साथ, क्योंकि बहुत आत्माओं के साथ कनेक्शन में दिन में आना है, तो बाबा को पता है वरदान की जरूरत पड़ेगी, और हर परिस्थिति में। और परिस्थितियाँ कौन कौन सी बताई, विकराल ज्वाला रूप, ऐसी भी परिस्थितियाँ आएंगी, चाहे माया से, प्रकृति से या व्यक्तियों से परिस्थितियाँ आएंगी, लेकिन तुम्हें सदा स्नेही मूर्त बन के रहना है। तो सवेरे सवेरे बाबा कहते परमात्म प्यार से अपने आप को इतना भरपूर कर लो, इतना भरपूर कर लो कि संसार का कोई भी प्यार आकर्षित ना कर सके। और प्यार आकर्षित करता है, चाहे वो लौकिक का हो चाहे अलौकिक का हो, लेकिन अपने आप को पारलौकिक प्यार से अलौकिक प्यार से इतना भर लेना है कि संसार से, संसार के सभी लौकिक जितने भी प्यार है वो फीके पड़ जाए। और सभी अनुभव करते होंगे बाबा के प्यार की, जिसको अच्छी अनुभूति होती है तो संसार का प्यार अच्छा लगता है। फिर बाबा ने कहा निभाना तो सबके साथ है, लेकिन ऊपर ऊपर से प्यार को उनसे तोड़ निभाना है, स्वयं को नहीं तोड़ना है लेकिन तोड़ निभाना है। तो बाबा कहते तुम्हें क्या करना है, स्नेहमयी सृष्टि रचनी है। स्नेहमयी सृष्टि कैसे रचनी है, कोई बैठे बैठे तो नहीं रचनी नहीं है, सारे दिन में क्या करना है, संबंध संपर्क में आते हैं तो स्नेह देना है, स्नेह लेना है, स्नेही मूर्त बन के रहना है, सीरत संबंध संपर्क व्यवहार सब में स्नेही मूर्त बन के रहना है। तो ये ज्ञान जो है ये हम सबको स्नेह से भरपूर कर देता है, अंग अंग जैसे परमात्म स्नेह से भरपूर हो जाए, हमारी दृष्टि से देख जैसे किसी को स्नेह का अनुभव हो जाए, वो जैसे संसार ही भूल जाए। संसार में बाबा ने कहा ना एग्जाम्पल दिए, तीन एग्जाम्पल, विश्व में अरबपति खरबपति हैं लेकिन स्नेह के भूखे हैं, प्यासे हैं, भिखारी हैं जैसे। और बाबा ने हमको क्या बना दिया, माला माल बना दिया, एक सेकंड में माला माल बना दिया। साइंस वालों के लिए क्या कहा बाबा ने, ये खोजने में लगे हुए हैं, भले सुख के साधन इतने आविष्कार कर लिए, अनुसंधान कर दिए, सुख के तो अंबार, साधनों के अंबार लगा दिए, लेकिन स्नेह नहीं है। वो जैसे खोजने में लगे हुए हैं, खोजने में खोए हुए हैं। और तीसरा किसको याद किया, नेताओं को, उनके के लिए क्या बोला, वो कुर्सी संभालने में लगे हुए हैं, साम दाम दंड वेद लगा के कैसे ना कैसे हमारी कुर्सी हाथ में आ जाए। और बाबा ने हमको कहां बैठ, कौन सी कुर्सी पर बिठा दिया, अपने दिल तख्त पर बिठा दिया। कितना बड़ा तख्त था भगवान का, कितनी बड़ी बाबा के प्रति हमारे प्रति ये उपकार की भावना है, स्नेह की भावना है, उमंग उत्साह की भावना है, कि बाबा हमको अपने समान बनाने के लिए कितनी मीठी मीठी बातें बताते हैं। तो ऐसे महसूस करना है कि जैसे हम बाबा के दिल तख्त पर बैठे हुए हैं, है ना। योग में ना इमेजिनेशन करनी है, एक दिल जैसे हॉल है, अब ये सोचना है अमृत वेले हॉल में नहीं बैठे हुए हैं, ये जैसे दिल की शेप का है, ये भगवान का दिल तख्त है ना, उस दिल में मैं बैठा हुआ हूँ। और भगवान का दिल कैसा है, बड़ा नरम नरम है एकदम, और कैसा है, बड़ा पवित्र है वो, बड़ा मीठा है, बड़ा विशाल दिल है वो, जैसे प्यार से भरा हुआ दिल है, वहाँ मैं आत्मा बैठी हूँ, मैं देह की शुद्ध बुद्ध भूल चुकी हूँ, क्योंकि जिस दिल पर मैं बैठी हूँ उसके समान उसने मुझे बनाने के लिए स्वयं उसने बिठाया है, तो मैं भी जैसे परमात्म प्यार से भरी हुई आत्मा हूँ। तो योग के अलग अलग विजन क्रिएट करने हैं, नहीं तो रोज ये एक ही सोच रहे हैं, मैं बिंदु बाबा बिंदु, मैं बिंदु बाबा बिंदु, और वो बिंदु बिंदु में पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, सारा बिंदु ही खो जाता है। तो योग के नए प्रयोग करने हैं। तो बाबा कहते हैं आपके जीवन में परिवर्तन कैसे हुआ, स्नेह के कारण परिवर्तन हुआ। सेंटर में सबको जाते ज्ञान थोड़ा समझ में आता है, सबसे पहले पहले क्या होता है, पहले तो टोली अच्छी लगती है ना, और बहुत सारी आत्मा यज्ञ में भी टोली खा खा के बाबा की बनी है। इसलिए संसार में भी कहावत है, अगर किसी के किसी का दिल जीतना है तो उसका रास्ता कहां से जाता है, पेट से जाता है। अगर किसी के दिल को जीतना तो पेट से रास्ता जाता है, अर्थात उसको खिलाओ पिलाओ अच्छा अच्छा तो हमारी दीदियां दादियां बहनें कितनी पालना करती हैं, अच्छी अच्छी चीजें बना के खिलाती हैं, कहां से, ब्रह्मा बाप के भंडारे से और शिव बाबा की भंडारी से। तो ये भंडारा और भंडारी कैसी है, इस भंडारे में क्या क्या मिलता है, क्या क्या मिलता है, ब्रह्मा भोजन मिलता है और क्या मिलता है, ज्ञान का भोजन भी मिलता है। नहीं तो जैसे बोलते ना भंडारा, वो हमारी वृत्ति सारी भोजन की तरफ ही चली जाती है, नहीं ये सोचना ज्ञान के लड्डू खा रहे हैं हम, ज्ञान की बर्फी खा रहे हैं, ज्ञान का गर्मा गर्म हलवा तैयार करके खा रहे हैं, नहीं तो वो भंडारा आते ही शब्द भोजन घूमने लगता है, आज भोग में गर्म गर्म जलेबी खाएंगे, पकौड़े खाएंगे, वो तो खाने खाने हैं। लेकिन उसको हमको बताया ना, पुरुषार्थ को चेंज करना है, हर चीज के साथ हमको ज्ञान को जोड़ना है। तो जो चीज हम वो कर रहे हैं वो उनके साथ, हमारा मन अपने आप ही ऐसा सोचना शुरू कर देगा कि जिससे ज्ञान का चिंतन अपने आप ही चालू हो जाएगा। भले सामने वाले तो बात कर रहे हैं लेकिन उनके बातों बात करते हुए भी हमारा मन उपराम रहेगा, वहां हमारा मन जाएगा नहीं तो दूसरों की बातों में बह जाएंगे हम। इसलिए बाबा ने बोला किसी को रोक तो सकते नहीं है, हलचल तो होगी संसार में, आवाज भी होगी, आवाज में तुमको क्या करना है, आवाज में रहते भी आवाज से परे। बाबा ने कहा तुम आते हो चाहते हो आवाज से परे और बाबा को बुलाते हो आवाज में, 18 जमने की बताया ना आज की मुरली में, जो आवाज से परे रहने वाला उसको नीचे बुला लेते हो और खुद ऊपर चले जाते हो, लेकिन बीच में हमारे क्रॉस हो जाता है ना, बीच में मिल लेते हैं, क्यों, क्योंकि आज कौन सा दिन है, फ्रेंडशिप डे है, तो बीच में हमारा मिलन हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा दो अभ्यास, आज महत्वपूर्ण मुरली के दो अभ्यास बताए, कौन से दो अभ्यास बताए, कौन से, अभी अभी कर्मयोगी और अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी अशरीरी, हाँ जी आकारी रूपधारी अशरीरी। तो एक सेकंड में साइलेंस हो जाओ सभी और सीधा पहुंच जाओ शांति धाम। बापा शरीर में, फिर सीधा शांति धाम, बाबा को टच किया, जैसे बाबा से सारा करंट मुझ आत्मा में आता जा रहा है और मैं स्पष्ट रूप से अपने आप को एक चमकता हुआ शक्तिशाली सितारा अनुभव कर रही हूं। फिर वापस अपने शरीर में, फिर शरीर से निकलकर फरिश्ता रूप सूक्ष्म वतन, सामने बाप दादा अव्यक्त रूपधारी, हाथ पसारे सामने खड़े और मैंने भी अपने हाथ बाबा के सामने रखे, बाबा ने मेरे दोनों हाथ पकड़े, बाबा की आंखों से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी आंखों में समा रही हैं, बाप दादा की वृक्ति से सर्वशक्तियों की किरणें निकलकर मुझ वृक्ति में समाती जा रही हैं, मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। संपूर्ण फरिश्तों का मिलन हो रहा है। बाबा स्वान में अव्यक्त फरिश्ता सूक्ष्म वतन में, वापस अपने शरीर में आ जाओ। अब फरिश्ता बनकर अपने अपने लौकिक घर में पहुंच जाओ, सेवा केंद्र पर, और पूरा चक्कर लगाओ सेवा केंद्र का या घर का, घर की पूरी प्रक्रिया। जैसे सूक्ष्म वतन से बाप दादा से ली हुई सर्वशक्तियाँ घर के चारों ओर वाइब्रेशन के रूप में फैला रहा हूँ, जैसे सारा घर परमात्म शक्तियों से जगमगा रहा है, वहाँ के सारे नेगेटिव वाइब्रेशन भस्म हो चुके हैं, घर में सारे पॉजिटिव पवित्रता के वाइब्रेशन, एकदम खुशियों भरे वाइब्रेशन, स्नेह भरे वाइब्रेशन चारों तरफ फैल रहे हैं। फिर वापस अपने शरीर में यहाँ पर आ जाओ। ओम शांति। तो ये बीच बीच में अभ्यास करना है। बाबा ने कहा अंत में कोई पता नहीं कब हमको कह के थोड़ा समय आएगा कि भी अंत आ गया है। जितना भी आवाज़ हो संसार में, आवाज़ बंद नहीं होगा, उस आवाज़ में मैं अपने आप को ऊपर ले जाना है। जैसे यहाँ भी बैठे बैठे मोबाइल बज जाता है सेकंड में, तो ध्यान तो हमारा उधर चला जाता है, लेकिन नहीं बजता तो बजने दो, वो उसका भाग्य है। लेकिन भट्टी में तीन चार दिन आए तो मोबाइल सबके साइलेंस हो जाना चाहिए। ये भी एक संयम होता है कि मेरे में कितना संयम है, कि हम इतना इससे कितने डिटैच हो सकते हैं। नहीं तो इतना ज़बरदस्त एडिक्शन होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, कि संसार के नशों से भी ज़्यादा खतरनाक एडिक्शन है ये, और इससे कोई हमें दूसरा छुड़ाने वाला नहीं है। बाबा शक्ति तो देता है, लेकिन उस शक्ति को इग्नोर कर देते हैं हम। तो हमें यहाँ भट्टी में आए हैं 3-4 दिन, तो ये 3-4 दिन जैसे पूरी तरह अपने आप को एकदम शक्तिशाली बना लेना, जीवन में नवीनता आनी चाहिए। बाबा ने कहा कि तुम यहाँ आते हो किस लिए? सेरेमनी मनाने। सेरेमनी अर्थात मिलन मनाने, मिलन मनाने अर्थात खुशी मनाने, खुशी मनाने अर्थात नाचो गाओ और खाओ। तो खाना क्या है? ब्रह्मा भोजन। कौन सा ब्रह्मा भोजन? ज्ञान का ब्रह्मा भोजन। तो रोज कल फिर सवेरे सवेरे गर्म गर्म हलवा बनाना। कैसे बनाएंगे गर्म हलवा? पहले तो कढ़ाई लेनी पड़ेगी। तो कढ़ाई कौन सी कढ़ाई है? ये कढ़ाई है। इसके बीच में क्या डालना? देसी घी। कौन सा डालेंगे? परमात्म शक्तियों का देसी घी डाल देना, और देखना है योग की अग्नि धधक रही है और घी सारा पिघल गया है। और फिर क्या डालेंगे? चीनी। तो चीनी कौन सी डालेंगे? मीठी चीज कौन सी है? बाबा खुद ही मीठा है, सैक्रीन है ना वो, है कि नहीं? तो बाबा को पकड़ के इधर ही डाल दो, फिर उसको हिलाते रहो। सर्व संबंधों की सैक्रीन है बाबा, है ना? तो गर्म गर्म हलवा बनाना सवेरे सवेरे, और यहां से बाहर निकले तो पता लगे कुछ खा पी के आए हैं, है ना? तो बाबा की भंडारी और भंडारा ये समझेंगे तो क्या होगा? बरकत होगी। अगर उसमें मेरेपन का खोट है कि मेरा सेंटर, मेरा घर, मेरी प्रवृत्ति, तो जहां खोट है क्या होगा? वहां कमी है, अशुद्धि है, विसंगति है मन में, स्वार्थ है। जैसे निस्वार्थ परिवार बनता है ना, निस्वार्थ पारिवारिक प्यार है ये। तो अगर मेरापन आ गया तो जैसे स्वार्थ है वो, तो ये सोचना है जैसे जीवन ही भगवान का है, और सचमुच तो भगवान का जीवन है ना। सोचे तो हमारे पास हमको जो ये ज्ञान मिला है किसकी बदौलत मिला है? बाबा की बदौलत मिला है। कंपैरिजन करो संसार की आत्माएं और आज की, हर एक मुरली में क्या होता है? कंपैरिजन होता है। बाहर की आत्माएं कैसी हैं और तुम बच्चे कैसे हो, वो कंपैरिजन करो। ये नहीं सोचे कि मुझे मुरली याद नहीं रहती, कंपैरिजन करना चालू कर दो। कोई भी चीज को पकड़ो उसके बारे में बाबा ने क्या कहा और संसार वाले क्या कहते हैं, तो अपने आप याद आने लगता है, क्योंकि मुरली के पॉइंट बुद्धि में होते हैं ऑलरेडी। ये नहीं सोचो कि आपको मुरली याद नहीं रहती, सबको मुरली याद रहती है, लेकिन हमने दूसरी बातों को ज्यादा पकड़ के रखा, इसलिए चिंतन उनका चलता रहता है, इसलिए वो बातें हावी हो जाती हैं। मुरली याद रहती है सबको, किसको नहीं याद रहती? हाथ उठाओ, सबको याद रहती है ना? नहीं देखो, फिर ये सोचना नहीं कभी हमको मुरली याद नहीं आती है। सुना, कभी भी ये नहीं सोचना कि हमको मुरली याद नहीं रहती है, नहीं तो हम सोचते हैं हमको मुरली याद नहीं रहती। अरे याद रहती है, बोलो हमको मुरली याद रहती है, सारी मुरली याद रहती है। हाँ, पॉजिटिव सोचना है जी, ये नहीं सोचना कि हमको नहीं है, सोचना कि एक महीने की सारी मुरलियाँ याद है। और कल का स्लोगन क्या था, बात मत पूछो लेकिन सच में कल का स्लोगन तो याद रखने जैसा था। कौन सा था? विशेष आत्मा बनना है तो हर की विशेषता देखो, ये परसों का था। हाँ, कितनी जबरदस्ती, अगर तुम बच्चे अशरीरीपन का अभ्यास करो तो दूसरे के मन के भावों को जान सकेंगे, कितनी बड़ी बात है। और ये बड़े दीदी के बारे में हम सुनते हैं, उनमें विशेषता थी, कोई भी सामने आता था तो उनके सामने आते ही जैसे अंदर मन के भाव जान जाते थे। और आप भी अनुभव करते होंगे कई बार, कई दफ़ा ऐसे होता है सामने वाला कौन सी मानसिकता के साथ आया वो पहले से पता होता है कि ये सामने वाला क्या कहने आया है। तो कौन सा अभ्यास करना आज से ज़्यादा, अशरीरी बनने का अभ्यास, फरिश्ता बनने का अभ्यास, क्योंकि ये दोनों अवस्थाएँ ऊँची हैं और ऊँची अवस्था में स्थित होकर नीचे की सब चीज़ें दिखती हैं। तो जितना हम ऊंची स्थिति में स्थित हो जाएंगे, दूसरे के मन के भावों को जानने की बाबा शक्ति देता रहेगा अपने आप, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। तो कहां पहुंचे थे, गरम गरम मलबा बनाना है, मीठा मीठा पुरुषार्थ करना है, भारी पुरुषार्थ नहीं है, एकदम खुशी खुशी बैठना है। और नहीं होगा लगे सामने चित्र को देखो, मम्मा को देखो, क्या देखेंगे, मम्मा के बारे में क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे। जैसे बच्चे स्कूल में होते थे ना, ऐसे लिखो इनके ऊपर निबंध लिखो, है ना, तो निबंध लिखो सामने सामने बैठ के, मम्मा कैसे लग रहे हैं देखो, दिव्यता अलौकिकता से भरपूर पवित्रता की मूर्ति, देखो आंखें उपराम है, एकदम ऊपर ऊपर देख रहे हैं, उनका पहनावा देखो, पांव थोड़े से, तो उनका देखना जैसा मम्मा का पहनावा है ऐसे हमारा है, कि अभी भी फैशन ने जकड़ के रखा हो अभी भी, अच्छा अच्छा सेंट वेंट मार के, बालों को मेहंदी वेंदी लगा के थोड़ी ओड़ी, लेकिन समाज में रह के करना पड़ता थोड़ा थोड़ा, है ना, तोड़ निभाने के लिए। तो अपने आप को जांच करनी है अच्छी तरह से, तो सहज पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने कहा कि भंडारा भी भरपूर और भंडारी भी भरपूर, है ना। और बाबा ने कहा अपने कौन से नशे में रहो, दो बातें बताई, पूज्य और पूर्वजपन के नशे में रहो। हम कौन सी आत्माएं हैं, पूर्वज आत्माएं हैं, संसार की उद्धार मूर्त आत्माएं हैं, सारा संसार की आत्माएं हमसे जुड़ी हुई है। जैसा बीज होता है वैसे आगे उसकी रचना होती है, हाँ जैसा फाउंडेशन है वैसे तना निकलेगा ऊपर, फिर वैसे उसकी शाखाएं पर शाखाएं होंगी, टाल टालियां होंगी, फल भी वैसे निकलेंगे। तो हम कौन सी आत्माएं हैं, पूर्वज पूज्य आत्माएं हैं, आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्माएं, पूज्य आत्माएं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, मंदिरों में लोग हमारी मूर्ति को देख के खुश हो रहे हैं और हमें मुंह लटका के बैठे हैं, कैसा लगेगा वो। ऐसा नहीं सोचना कि हम यहाँ नहीं हैं, हमारी जो मंदिरों में इतनी मूर्तियां बनी हुई हैं तो हमारे वाइब्रेशन वहां जाते ही रहते हैं, वो परोक्ष अपरोक्ष रूप से हमारे वाइब्रेशन पूरे संसार तक पहुंचते हैं। सर्व की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए बाबा का चमत्कारी जादू तो चलता ही रहता है। ये तो बाबा अगर थोड़ा सा ऊपर से हटाए तो क्या हमको अहम आ जाए, अहंकार जागृत हो जाएगा, इसलिए बाबा हम सबके ऊपर थोड़ा हाथ रखता है, नहीं तो क्यों प्रारब्ध जो हमारी खत्म हो जाएगी, नहीं तो अभी भी, क्योंकि हमारा डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन है। इसलिए जो भी संकल्प करते हैं, बाबा कहते हैं संकल्प को सिद्ध करने में आप बच्चों में शक्ति है, वो हर एक संकल्प ब्राह्मणों का सिद्ध होता है, चाहे वो नेगेटिव संकल्प करें चाहे पॉजिटिव संकल्प करें, तो संकल्पों में सिद्धि है ही है, लेकिन सिद्धि दाता साथ को साथ रखेंगे तो वो पॉजिटिव परिणाम मिलेगा उसका, अगर वो सिद्धि दाता भूल गया तो नेगेटिव परिणाम, तो हमारी शक्तियां भी खर्च हो जाएंगी, फिर खजाना खाली हो जाएगा, फिर बाद में देखेंगे कि जमा तो बहुत किया था, अभी दिख तो कुछ नहीं रहा, पता नहीं कौन ले गया निकाल के, ये नहीं पता हमने खुद ही खा लिया उसको सारा। तो हम पूज्य आत्मा है, पूर्वज आत्मा है, सहारे दाता आत्मा है, दूसरों को सहारा देने वाले हैं, है ना, तो और स्नेह के सागर हैं। और क्या कहा, दादियों के साथ बाबा ने मिलते हुए सफलता के लिए बाबा ने क्या दिया हुआ दादियों को, विशेष पावर्स, विशेष शक्तियाँ दी हैं और वो समीप रत्न है, यज्ञ के आदि काल से लेकर अंत तक समीप रत्न। तो हमको भी क्या सोचना है कि हम बाबा के समीप रहने वाले हैं, और बाबा ने कहा अगर समान बनना है तो क्या करो, बाप जैसा पुरुषार्थ भी करो। ब्रह्मा बाप समान बनना है तो उसके जैसा पुरुषार्थ भी करो। तो पुरुषार्थ कैसा ब्रह्मा बाबा का? त्याग, तपस्या। जीवन में बाबा ने एक दक्ष से त्याग कर दिया, धन संपत्ति का तो किया किया, लेकिन उससे ही बड़ा त्याग कौन सा किया? मान प्रतिष्ठा का। जिनकी संसार में इतनी प्रतिष्ठा थी, मान सम्मान था, बाद में वही लोग विरोधी हो गए, कितनी बड़ी बात है। जिनको सारा संसार इतनी ऊंची नजरों से देखता था, बाद में वही ऐसी वैसी नजरों से देखना आरंभ कर दिया, तो बाबा का, ब्रह्मा बाबा का, शिव बाबा के प्रति कितना प्यार था ये। तो बाबा जैसे हमारे जीवन में वैसे लक्षण तो दिखाई देने चाहिए ना। तो हम भी बाबा की तरह त्याग मूर्त हैं, तपस्या मूर्त हैं। और बाबा का जीवन कैसा था? मिलनसार। बच्चों के साथ बच्चा, बूढ़ों के साथ बूढ़ा, और हम जिन्स के साथ हम जिन्स, युवा के साथ युवा। तो हमको भी कैसा बनना है? कोई भी आए, चाहे बच्चा चाहे बूढ़ा, कोई भी आए, सबके साथ स्नेह संपन्न प्यार व्यवहार होना चाहिए, प्यार वाला पर व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा तो मुझको इग्नोर कर दे, नहीं, उससे भी दोस्ती करो। आजकल घरों में, रिश्तों में दूरियां क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि हम सोचते हैं जैसे बड़े हो जाते हैं बुजुर्ग लोग, तो वो सोचते हैं बच्चे हमारे अनुसार चले, लेकिन अब जमाना तो चला गया है। वो आजकल माता पिता को भी बच्चों के अनुसार, बच्चों को दोस्त बनाना चाहिए, क्योंकि जमाना चेंज हो गया है। हम सोचे हमारा कहना माने, ये हो नहीं सकता। अभी वो समाज पहले वाला कुछ और, संस्कृति कुछ और थी, अभी संस्कृति और हो गई है, अभी हाईटेक टेक्नोलॉजी वाला जमाना है। नहीं तो हम चाहते हैं कि अपनी अपेक्षाओं के अनुसार ही हमारे बच्चे चले, लेकिन नहीं, उनके अनुसार थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। रिश्तों को निभाने की कला सीखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो हम मुंह फुला के साइड किनारा कर लें, नहीं, उनको भी बाबा का प्यार अनुभव कराना है। वो भी भगवान के बच्चे हैं, क्योंकि जहां हम रहते हैं वो जैसे बाबा कहते तुम्हारे लिए सेवा केंद्र है, सेवा स्थान है। ग्लोबल हॉस्पिटल के क्या बोला बाबा ने, जैसे योग का केंद्र है, योग भवन है, जैसे हैप्पी हाउस है। बाबा ने कहा सदा हर्षित मूड में रहो, एवर हेल्दी, एवर हैप्पी। तो हमेशा हमें हर्षित मूड में रहना है, मूड ऑफ नहीं करना है। और मूड ऑफ क्या, कौन सी बातों से मूड ऑफ होता है, सबको अपना अपना पता है, लेकिन उन बातों से हमको ना प्यार भी बहुत हो गया, व्यर्थ की बातों को छोड़ते नहीं हम। छोटी छोटी बातें हैं, हमको पता है कि कौन सी बातों से मूड हमारा ऑफ हो जाता है, कि जो बाबा ने पुरुषार्थ करने के लिए हमको बोला, थोड़ा बहुत तो कर लिया 10%, लेकिन 90% हमने दूसरी बातों को पकड़ के रखा हुआ है, तो पलड़ा कौन सा भारी रहेगा? फिर वो खुशी गायब रहेगी, वो खुशनुमा जीवन कहाँ आएगा? बाबा ने कहा तुम्हारे जैसा खुशनी संसार में कोई है नहीं है, खुशियों का भंडार मिल गया, तुम खुशी के देवता हो, खुशी की देवी हो। तुम्हें देखकर ही दूसरे की बीमारी दूर होनी चाहिए। डॉक्टर से मुलाकात की ना बाबा ने, ग्लोबल हॉस्पिटल से, संसार ही जैसे, पूरा संसार कैसे बन गया है, रोगी की तरह हो गया ना। कितने रोग हैं संसार में, मन के रोग, शरीर की बीमारियां, कितनी बीमारियां हैं। तो हमें हर चीज, ये जो नॉलेज है, ये हर तरीके से हमें हेल्दी वेल्दी हैप्पीनेस बना के रखती है। शरीर की नॉलेज भी चाहिए और मन की नॉलेज भी चाहिए, और संबंध संपर्क में कैसे आना उसकी भी नॉलेज चाहिए। समय परिस्थितियां देख के कहाँ क्या बोलना है, कैसे देखना है, कैसे उठना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, ये सारी चीज़ें हमको पता होना चाहिए। और ये तब होगी जब हमारी दोस्ती बाबा से गहरी होती जाएगी, वो हमको सब सिखाएगा। हमारे में कौन सी ताकत है सीखने की? सिखाने की ताकत देने वाला तो वही है ना। तो सारी मुरली में इतनी सारी अनेक बातें होती हैं जो हमारे जीवन को स्नेह से भर देती है। मुरली तो जैसे स्नेह का सागर ही है, मुरली में जैसे भगवान समाया हुआ है। क्योंकि अभी तो भगवान के मिलने की प्रक्रिया बदल गई ना सारी। अभी तो हमेशा ये सोचना कि मैं और बाबा अंग संग रहते हैं दोनों। जो गीत ना, तुम तो यहीं कहीं, बाबा मेरे आसपास हो, वो प्रैक्टिकल में अभी अनुभव करने का समय है। अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं कर सकते। समय कितनी तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है, सब देख रहे हैं, पुराने पुराने भी सब देखा होगा। तो ये हम मधुबन की धरने में आए हैं, भट्ठी में आए हैं, तो इस भट्ठी में अपनी सारी जो कमी कमजोरियां स्वाहा कर देनी है। और क्या करना, कल 100 विशेषताओं की लिस्ट बनानी है अपनी, और दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने पास रखनी है, और दूसरे की भी विशेषताएं देखनी है, जिनके साथ हमारा थोड़ा मन मुटाव रहता है उनकी भी विशेषताएं देखनी है, उनका भी गुणगान करना है। बाबा ने कहा 5% तो मार्जिन दिया हो, कोई अपने संस्कारों से परेशान रहता उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन शुभ भावना शुभ कामना तो मन में रख सकते हैं ना, और ये सबसे बड़ी बात है सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना। लेकिन वो मन तभी भरपूर रहेगा जब ज्ञान हमारी बुद्धि में घूमता रहेगा। ये ज्ञान जो मन बुद्धि का बर्तन है, ये ज्ञान से इसको साफ करते रहें, स्वच्छ बनाते रहें, ताकि इसमें परमात्मा की प्यार की वो बूंदे भरते जाएं, वो परमात्मा प्रेम का सागर यहाँ उमड़ता रहे। तो कितनी सारी बातें सुनी बाबा ने, किससे मिलन नया आज, बेहद के परिवार में। बेहद के परिवार में कौन से बच्चे बैठे हैं, ये ब्राह्मण बच्चे बैठे हैं, ब्राह्मण परिवार है, ये कोई सभा नहीं है, आम सभा नहीं है, ब्राह्मण परिवार है, और अलौकिक परिवार है, और अति न्यारा और अति प्यारा परिवार है, चित्र में भी होते जैसे विचित्र परिवार है, अनोखा परिवार है। और बाबा कहते कैसा परिवार है ये, जो भगवान से मिलन मनाता है, भगवान से बातचीत करता है। संसार वाले तो कहते हैं ढूंढ रहे हैं, और हम क्या कहते हैं मिल गया, कितना फर्क पड़ गया। वो ढूंढने में लगे हुए हैं, खोजने में लगे, खोए हुए हैं उसमें, और हमें भगवान स्वयं मिल गया तो कितनी बड़ी खुशी है। लेकिन भगवान के मिलने का जीवन में अनुभव प्रैक्टिकल में महसूस होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ों से हमको अपने ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ हमारी एनर्जी वेस्ट जा रही है, जिस एनर्जी के कारण हमारे जीवन के परिवर्तन नहीं हो रहा है, प्रगति नहीं हो रही पा रही है। पिछले संडे की मुरली क्या थी, हाँ यथार्थ चार्ट रखेंगे तो परिवर्तन होगा, प्रगति होगी। तो प्रगति ना और धीरे धीरे होती है, स्लो स्लो आए, ऐसे नहीं कि फास्ट से एकदम सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करते रहेंगे तो मन में एक संतुष्टता का भाव पैदा होगा, संतुष्ट मणि बन जाएंगे, संतुष्टता का प्रकाश फैलेगा। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण परिवार है, अमृत वेले से बाबा से मिलन मनाते हैं, बाबा से वरदान लेने हैं, मीठी मीठी रूहान करनी है, और जो वरदान लेना उसको दिन में बार बार रिवाइज करना है, ऐसा नहीं कि केवल सवेरे सुन लिया और दिन में भूल गए, नहीं, कुछ एक बातें 5-7 बातें वरदान के रूप में बना के सारे दिन उनको बुद्धि में रिवाइज करते रहना है, महसूस करना है जैसे वरदान वो सारा मेरे अंदर समा गया है और मैं वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। महसूस करना है जैसे मंदिरों में मैं देवी बैठी हूँ, देवता बैठा हूँ, और सबको वरदान दे रहा हूँ, और हस्तों से वरदानी किरणें निकल रही हैं, और फिर बीच में मुरली में जो भी बाबा अभ्यास बताते हैं, 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ, तो फिर से 1 सेकंड में चले जाओ शांति धाम, बाबा को टच करो, फिर वापस अपने शरीर में। तो ये अभ्यास बार बार करते रहना है। तो अभी 3 मिनट 9:30 का रिकॉर्ड बजेगा, तो 3 मिनट सभी ये अशरीरी और फरिश्तापन का अभ्यास, महसूस करना है जैसे बाबा ने हम सबको पकड़ के रखा है, बाबा की सारी शक्तियां मुझ में समाती जा रही हैं, वो अंग संग बैठा हुआ है। ओम शांति।